प्रिय भक्तजन भाइयों बहनों, शारदा माँ सेवा संघ के समस्त सदस्य एवं समस्त वसुधैव कुटुम्बकम्, ये पृथ्वी जो है ये हमारा परिवार है। पृथ्वी में जितने भी लोग रहते हैं हमारे परिवार के सदस्य हैं। इस नाते हमने या जो कुछ भी हम करते हैं वो सब से कहीं ना कहीं जुड़ जाता जा करके, क्योंकि सबकी आत्मा में वो भगवान का ही अंश है। आज हम गीता के 18वें अध्याय के 11 श्लोक का पारायण करेंगे और समझेंगे कि भगवान ने हमें क्या करने को कहा है, क्या नहीं करना चाहिए, वो कैसे करना चाहिए, कर्तव्य कर्म क्या होता है। कल हमने किए थे एक विहित कर्म, एक नियत कर्म। विहित कर्म जो ग्रंथों द्वारा हमें बताए गए हैं कि ये करो ये करो, लेकिन नियत कर्म जो होते हैं वो द्वारा। तो हमें कल हमने जाना था कि भक्त को जप ध्यान कथा कीर्तन आदि कर्तव्य समझ कर नहीं करने चाहिए। ये क्या है, नियत करनी है, विहित करना है, और ये कर्म मनुष्य को भगवान से जोड़ते हैं। लेकिन विहित कर्म जो है वो ड्यूटी है, वो की और छोड़ दी, काम हो गया पूरा, बस इतने तक उसका संबंध रहता है। तो आज मैं ज्ञान श्लोक का पारायण करती हूँ। ना ही दे भृतम शक्यम तत्तु कर्मण्य शेषता यस्तु कर्म फल त्यागी सा त्यागी ते विधीयते। कारण की देहधारी मनुष्य के द्वारा संपूर्ण कर्मों का त्याग करना संभव नहीं है, इसलिए जो कर्म फल का त्यागी है वही त्यागी है, ऐसा कहा जाता है। त्यागी कौन है, जो कर्म के फल को छोड़ देता है, मैंने किया लेकिन फल की इच्छा से नहीं मिले ना मिले। तो कर्म फल का त्याग का तात्पर्य है कर्म फल की इच्छा का त्याग करना। कारण की कर्म फल का त्याग हो ही नहीं सकता, जैसे शरीर भी कर्म फल है, फिर उसका त्याग कैसे होगा, भोजन करने पर तृप्ति का त्याग कैसे होगा, खेती करने पर अन्न का त्याग कैसे होगा। अगर साधक को कर्म फल की इच्छा का त्याग करना है न कि कर्म फल को, अब खेती करने तो गेहूं तो आनी भूखा फेंकानी है ना, जो भी काम करना है इच्छा का त्याग करना है। अतः साधक को कर्म फल की इच्छा का त्याग करना है। फल इच्छा का त्याग करने से अधिक सुखी दुखी नहीं होते, इसलिए गीता में फल इच्छा का त्याग को ही फल का त्याग कहा गया है। ज्ञान योग में फल कर्म फल की इच्छा का त्याग होता है और ज्ञान योग में अभिमान का त्याग होता है। इच्छा का त्याग करना है कि चलो दो क्वांटल गेहूं निकला तो भी ठीक है, एक निकला तो भी ठीक है ना, लेकिन हाँ गेहूं उगाना नहीं, खेत में जाना ही नहीं, तो वो गलत है। बाहर का त्याग वास्तव में त्याग नहीं है, प्रतुत भीतर का त्याग ही त्याग है। यदि कोई बाहर से त्याग करके एकांत में वन में या हिमालय में भी चला जाए तो भी संसार का भी शरीर तो उसके साथ ही है। शरीर जो एक है संसार का बीज है। मरने वाले का अपना शरीर सहित सब व्यक्तियों और प्रयासों का त्याग हो जाता है, पर इससे उसका मोक्ष नहीं हो जाता। जो मर गया उसका अपना शरीर भी गया, संबंधी भी गए, सामान भी गया, उसका घर भी छूट गया, पर उसको मोक्ष नहीं मिला। क्यों नहीं मिला, क्योंकि वो कामना वासना में फंसा हुआ है। अतः हमारे भीतर की कामना ममता आसक्ति ही बांधने वाली है, संसार बांधने वाला नहीं है। इसलिए अपने लिए कुछ न करने से कर्मों से संबंध विच्छेद हो जाता है। मतलब इस भाव से कर्म करने के मेरे लिए मैं अपने लिए कर रहा हूँ। योग्य चेता कर्म समझियों का भी लिए थे गीता अध्याय 4 श्लोक 30। यदि कोई समाधि लगा ले तो उसमें बाहर की क्रियाओं का संबंध छूट जाता है, परंतु समाधि भी क्रिया है, करना है ना उसमें, इसलिए क्या होता है जिसमें कुछ किया जाता है, इसलिए समाधि से भी उत्थान हो जाता है, क्योंकि समाधि में प्रतिजन्य कारण शरीर का संबंध बना रहता है, कारण शरीर होता है संस्कार शुभ और अशुभ समाधि में होते हैं वो। श्लोक 12। कर्म फल का त्याग न करने वाले मनुष्य को कर्मों का इष्ट अनिष्ट और उचित ऐसे तीन प्रकार का फल मरने के बाद भी होता है, परंतु कर्म फल का त्याग करने वाले को कहीं भी नहीं होता है। जो कर्म फल का त्याग नहीं ना करते हैं, अपने लिए खाना बनाना अपने लिए जो कुछ काम अपने लिए अपने परिवार के लिए, तो कहते हैं कि वो तीन प्रकार का फल मरने के बाद भी मिलता है। जिस परिस्थिति को मनुष्य चाहता है वह इष्ट है, अनुकूल है, वह कर्म फल कैसा है, अनुकूल कर्म फल है। जिस परिस्थिति को मनुष्य नहीं चाहता वो प्रतिकूल है, अनिष्ट है। वो पहला इष्ट है, दूसरा अनिष्ट है, पहला अनुकूल है, दूसरा प्रतिकूल है। और जिसमें कुछ भाग इष्ट का तथा कुछ भाग अनिष्ट का होता है वह मिश्रित कर्म फल होता है। वास्तव में देखा जाए तो संसार में प्राय मिश्रित ही फल होता है, अर्थात इष्ट में भी आंशिक अनिष्ट और अनिष्ट में भी आंशिक इष्ट रहता है, मिले जुले हैं। जो मनुष्य फल की इच्छा रखकर कर्म करते हैं उनके तीनों कर्म फल अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति के रूप में प्राप्त होते हैं। कभी देखो हमें दुख आता है, कभी सुख आता है, वो क्या है, क्योंकि हमने इच्छा की होगी ना तो वो हमारे सामने आएगी, कभी सुख देगी वो इच्छा और कभी दुख देगी। सुखी दुखी होते रहते हैं। अनुकूल परिस्थितियों में से सुखी होना, प्रतिकूल परिस्थिति से दुखी होना ही बंधन है। अगर पिछले जन्म के अनुसार हमें अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियां आती हैं, तो हमें पिछला जन्म तो व्यतीत हो गया, लेकिन इस जन्म में हमें अगर अनुकूल आए तो उतना हो जाना चाहिए और प्रतिकूल आए तो दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि दोनों ही मनुष्य को बांधते हैं। परंतु फल इच्छा का त्याग करके कार्य करने वाले मनुष्यों को इस जन्म में मरने के बाद भी कर्म फल भोगना नहीं पड़ता, चाहे वो अनुकूल फल हो चाहे प्रतिकूल हो, दोनों किनको, जो कि पहले ही जो भी काम करता है उसके फल की इच्छा छोड़ देता है, भगवान को अर्पित कर देता है। पूर्व जन्म में किए हुए कर्मों के अनुसार इस जन्म में उसके सामने अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थिति तो आती है, पर वे उनसे सुखी दुखी नहीं होते। ये हमें सुन लेना चाहिए अच्छे से कि कौन दुखी नहीं होते, अनुकूल और प्रतिकूल में भी स्थिर बुद्धि रहते हैं, जिन्होंने की फल की इच्छा नहीं रखी थी। श्लोक 13। संकेतानि महाबाहो कारणानि योग में संकेतितानि प्रोक्तानि सिद्धे सर्वकर्मणाम्। ये महाबाहो कर्मों का अंत करने वाले संख्या सिद्धांत में संपूर्ण कर्मों की सिद्धि के लिए पांच कारण बताए गए हैं, इनको तुम उससे समझो। कर्मों की सिद्धि कैसे हो उसके लिए पांच कारण बताए। अधिष्ठानम तथा कर्ता कर्णम चिदम विविधाश्चिचेष्टा देवम चवित पंचम। इसमें कर्मों की सिद्धि में पहला है अधिष्ठान, दूसरा है कर्ता, और अनेक प्रकार के कर्ण कर्णों के साधन एवं विविध प्रकार की अलग अलग चेष्टाएं क्रियाएं, और वैसे ही पांचवा कारण है संस्कार। ये पांच कारण है जिससे कि ये सब कुछ मिलता है। व्याख्या, यहाँ आत्मा को कर्ता बताने के लिए पांच कारणों का वर्णन किया गया है। आत्मा तो निर्लेप है, वो तो प्रकाशमान है, तो भगवान कांश है, लेकिन फिर ये संसार कैसे चलता है, इसके लिए बताते हैं कि पांच चीजें हैं। कहते हैं इन पांचों में कर्तृत्व मैंने किया का त्याग होने पर कर्मों का संबंध विच्छेद हो जाता है। कर्मों की सिद्धि में मेरे पांच कारण इस प्रकार है। पहला अधिष्ठान रसायन जिसके द्वारा तब वो हमारी बोली शरीर। दूसरा कर्ता, कर्ता जो मान लेता है कि मैंने किया, जीव आत्मा जब जुड़ जाता है कहता मैंने किया तो वो कर्ता बन जाता है। तीसरा कर्म, कर्म तो साधन, जैसे कहीं चोट लगानी तो थोड़ा चाहिए, वो कर्म हमारे शरीर में कौन कौन से हैं? पांच कर्म इंद्रियां हैं। आपको ज्ञात होगा कि वो पांच कर्म इंद्रियां कौन है, पांच ज्ञान इंद्रियां दस हो गए भी आपको पता है। ज्ञान में क्या मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इन्होंने अहंकार दिया है। ये तेरह कारण बताए इन्होंने, पांच ज्ञान इंद्रियां, पांच पहले कर्म इंद्रियां जो कर्म करते हैं जैसे हाथ पांव वाणी, तो पांच है ज्ञान इंद्रियां जिससे ज्ञान होता है। आंखों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं, नाक से सूंघते हैं, जीवा से स्वाद लेते हैं, त्वचा से हम स्पर्श का पता लगता है, ज्ञान इंद्रियां है। एक मन है जो भागता रहता है, एक बुद्धि है जो निश्चय करती है, एक अहंकार है जो कहता मैं हूँ। ये तेरह कर्ण है। कर्णों की अलग अलग चेष्टाएं, इन सब की अपनी अपनी एक एक एक्टिविटी होती है, क्रिया होती है। जैसे मैंने अभी बताया ज्ञान इंद्रियों की क्रिया बताई मैंने आपको। और पांचवा है स्वभाव, मनुष्य का स्वभाव क्या, अच्छे अंतःकरण के अच्छे बुरे संस्कार। स्वभाव क्या है कि मनुष्य के भीतर जो शुभ और अशुभ, अच्छे भी और बुरे संस्कार जो है वो हमारा स्वभाव बनता है। क्रिया का वेग और स्वभाव दोनों एक ही है, मतलब जो हम काम करते हैं वो किस लिए करते हैं, वेग से, क्योंकि हमारा स्वभाव है। तो ये पांच कारण आपने हमेशा याद रखनी है, कौन कौन, अधिष्ठान, कर्ता, कर्म और चेष्टाएं और स्वभाव। श्लोक 15, शरीर मन मनोभिर यत कर्म प्राप्ते नरम न्यायाम विपरीतम वा पंच ते तस्य हेत्वा। मनुष्य शरीर वाणी मन के द्वारा शास्त्र विहित अथवा शास्त्र विरुद्ध जो कुछ भी कर्म आरम्भ करता है उसके ये पूर्वोक्त जो हमने पांच पढ़े, पांच हेतु होते हैं। मतलब मनुष्य अपने शरीर में क्या गया, हाथ पांव और वाणी द्वारा और मन के द्वारा चाहे शास्त्र के अनुसार काम करे चाहे शास्त्र के विरुद्ध करे, उसके कारण क्या है, रीजन क्या है, क्यों करता है वो ये काम अच्छे बुरे, क्योंकि उसके पांच हेतु है, इनको हेतु बोलते हैं जो भी हमने पांच पढ़े। श्लोक 16, तत्व सती करता आत्मान केवल तुया पश्यते कृत बुद्धि पश्यती। परंतु ऐसे पांच हेतुओं के होने पर भी जो उस कर्म के विषय में केवल शुभ आत्मा को करता देखता है या एक दुष्ट बुद्धि वाला ठीक नहीं देखता, उसमें भी क्या है कि कुछ मनुष्य ऐसे होते हैं पांच कारणों के विषय में उनको पता ही नहीं तो पांच कौन कौन से कारण है, और वो कहते हैं कि आत्मा ही कर रहा है जो हमारे भीतर बैठा है। और जब हम ये सोचते हैं कि आत्मा ही करता है तो हम अभिमान करते हैं कि बुद्धि शुद्ध नहीं है, कौन ऐसा देखता है समझता है जिसकी बुद्धि शुद्ध नहीं है, जो विवेकी नहीं है, जिसको भले बुरे का ज्ञान नहीं है। सब कारकों में कर्ता मुख्य है, कर्ता में चेतन की झलक आती है, अन्य कारकों में नहीं। वास्तव में कर्ता नाम चेतन का नहीं है, हेतु की चेतन द्वारा जड़ से माने हुए संबंध का है। ये व्याख्या चल रही है जो हमने पांच पहले ये कारण पढ़े। अहंकारात्मा कर्ता की मन्यते, गीता अध्याय 3 स्थाई में आया कि जो मूर्ख लोग होते हैं वो अहंकार से कारण करते कि मैंने किया, मैं सत्ता हूँ। स्वरूप में अगर हम अपने को शुद्ध चेतन माने तो वो ना हम करने वाले हैं ना ही भोगने वाले हैं। वास्तव में कर्ता कोई नहीं है, ना चेतन करता है ना जड़, यदि किसी को कर्तव्य मानना ही पड़े तो साधक के लिए यही उचित है कि वह जड़ को कर्तव्य माने। प्रकृति में भगवान ने, गीता में भगवान ने कर्मों के होने में 5 कारण बताए हैं। वो 5 कौन कौन है? एक है प्रकृति, दूसरा है गुण, पहले प्रकृति के विषय में पढ़ा ना, मूल प्रकृति भगवान की कुदरत, दूसरा गुण, 3 किस्म के गुण पड़े, तीसरा इंद्रिया, इंद्रिया 5 इंद्रिया, 5 कर्म इंद्रिया और मन, और फिर स्वभाव, और फिर अगला 5 होते हैं 5 हेतु, जो अभी किया हमने 5। वास्तव में कर्मों के होने में मूल कारण ये है कि कुदरत ही है, प्रकृति ही है। हमारे स्वरूप में हम सदगुरु आत्मा, उसमें तत्पन का भाव नहीं है, परंतु कुदरत से हम जब जुड़ जाते हैं प्रकृति से, तो हम कह सोचते हैं कि हम ही करता है। जैसे हम सोते हैं, हम सो गए, खाते हैं, हमने खा लिया, मैं नहीं आती सब जगह, साधक खाने पीने सोने जागने आदि लौकिक क्रियाओं को तो विचार द्वारा प्रकृति में होने वाली सुगमता से मान सकता है, लेकिन कहाँ होता है उसको भी हम सुनते कि हमने खाया। पर वह जब ध्यान समाधि आदि पार मारते क्रियाओं को अपने द्वारा होने वाली तथा अपने लिए मानता है, वो भी साधक के लिए बाधक है। कारण की ज्ञान योग की दृष्टि में किया चाहे ऊंची से ऊंची हो अथवा नीची से नीची, वह एक जाति की ही है, मतलब कुदरत ही है। लाठी घुमाना और माला फेरना दोनों तय है, लाठी घुमानो चाहे माला फेरना, लेकिन दोनों तय किसमें होती है? कुदरत में। खाने पीने सोने जागने आदि से लेकर जप ध्यान समाधि तक संपूर्ण लौकिक पारमार्थिक क्रियाएं व्यक्ति में ही हो रही है। जो कुछ भी हम कर रहे हैं, चाहे अपने लिए चाहे भगवान के लिए, वो सब कुदरत से ही संबंधित है। कुदरत के बिना कोई भी क्रिया संभव नहीं। अतः साधक को चाहिए कि वह पारमार्थिक क्रियाओं का त्याग न करे, पर उनमें अपना कर्तव्य करना माने। पारमार्थिक क्रियाएं कौन से? जप पूजा पाठ ध्यान, उनको नहीं छोड़ना चाहिए, उनको अपना भी नहीं मानना चाहिए। मैंने अपना कैसा कि मैंने किया, मैंने इतना जप किया, जैसे हम बोलते हैं मैंने इतना लिखा, मैंने ये किया, वो नहीं सोचना चाहिए। पर मैं अपना अहंकार न रखे, उन्हें अपने द्वारा होने वाली तथा अपने ये न माने, या चाहे लौकिक हो चाहे पारमार्थिक हो, उसका महत्व वास्तव में देवता का ही महत्व है। क्रिया क्रिया मैंने करना, वो क्या है? चाहे इस संसार से संबंधित है, चाहे भगवान से संबंधित है, उनका महत्व वास्तव में जड़ता का है, वो जड़ ही है, वो चेतन नहीं है। शास्त्र निहित होने के कारण पारमार्थिक क्रियाओं का अंतःकरण में जो विशेष महत्व रहता है, वह भी जड़ का ही महत्व होने से साधक के लिए बाधक होती है। तब बाधक बनती है क्रियाएं जब हम उससे जुड़ते हैं, अहंता करते हैं। भगवान के लिए की गई उपासना में भगवत कृपा की प्रधानता होती है, इसलिए इसमें साधक का कर्तव्य नहीं है। लेकिन समझने वाली बात है कि हम अपने को कर्ता नहीं मानते हैं जब हम भगवान की कृपा को मानते हैं। ये तो भगवान की कृपा से हुआ, ख्याल ही नहीं आता कि मैंने किया, उसमें तो भगवान की कृपा से हुआ। परमार्थिक क्रियाओं का उद्देश्य परमात्मा होने से ये कल्याणकारक हो जाती है, क्योंकि परमार्थिक क्रियाओं में हम भगवान के लिए करते हैं, भगवान का नाम ही लेते हैं। ये जो क्रिया की गुणता और भगवत संबंध की मुख्यता होती है, तीन क्रियाओं अधिक लाभ होता है। क्रिया की मुख्यता होने पर वर्षों तक साधन करने पर भी लाभ नहीं होता। यहाँ किया शब्द आ गया, मैंने किया, वहाँ पर भक्ति या जो हम चाहते हैं कि हमें भगवान की प्राप्ति वो नहीं होती है। अतः क्रिया का महत्व न होकर भगवान में प्रियता होनी चाहिए। तो हमने नहीं देखना कि हमने कितना लिखा, क्या किया, कितना पढ़ा, कितनी बार हम मंदिर गए, लेकिन हमने ये देखना कि हमारे मन में, हमारे हृदय में भगवान के लिए कितना प्रेम है। प्रियता ही भजन है, क्रिया नहीं। भजन तो देखो सभी करते हैं, भजन गाते हैं, कीर्तन होते हैं, बहुत कुछ होता है, लेकिन इसमें क्रिया रह जाती है। प्रियता भगवान से प्रेम नहीं हो पाता। अब मैं आपको श्रीमहाराज के संस्मरण में से जो कल प्रसंग छूट गया था उसको सुनाने जा रही हूँ। श्री महाराज जी ने अंत त्याग दिया है, केवल जल ही ग्रहण करते हैं। वे काया को इस प्रकार सूक्ष्म कर रहे हैं, अधिक समाधि में रहते हैं, कभी कभी जल पी लेते हैं, ये कुटिया के भीतर ही रहते हैं। तब लोग कुटिया में श्री महाराज जी के दर्शन कर पाते हैं। अधिक भक्त अधिक भक्तों के जाने से श्री महाराज को तंगी होती है, पता बिना आज्ञा किसी को भी मैं भीतर नहीं जाने देती हूँ। कभी कभी संत बिल्कुल बाहर बैठे रहते हैं। श्री महाराज कुछ अंतंग भक्तों से कहते हैं कि बाबा की समाधि बनाओ, बाबा जीवित समाधि लेगा। इस प्रकार यही प्रयत्न करते रहते हैं कि कोई भी उनकी आज्ञा माने और उनके लिए समाधि खोद दे, समाधि बना दे और बाबा को जीवित ही वहाँ बैठा दे। शादीलाल जी काफी देर तक सेवा में लगे रहते हैं रात के समय, और श्री महाराज जी से कुछ बातचीत भी करते हैं और उनको समाधि संबंधी सारी बातें उन्होंने बता दी है। बसे श्री महाराज केवल जल ले रहे है, श्री बड़ा खुश हो गया है, लेकिन वाणी में ओझ है। एक दिन वह बोले, माँ अब मुझे जाने दो, बाबा की समाधि बनवा दो। फिर कहा, भला बाबा कहाँ जाएगा? अपने बाजू की चमड़ी पकड़ कर दिखाते हुए पुनः बोले, अब काम नहीं कर सकता हूँ, इसलिए ना चाहिए जनता का अन्न, ना ही होती है जनता की सेवा। बिना सेवा के बाबा एक घास भी नहीं खाएगा, और फिर तुम रोते क्यों हो? बाबा भला कहाँ जाएगा? शरीर को दिखाते हुए केवल इसको बदलना है। इस प्रकार वे मेरे से बातचीत करते रहते हैं, परंतु कभी कभी उन्हें देख कर वो भावुक भी हो जाते हैं और भक्तों को बुलाकर कहते हैं, मम्मी जी का साथ देना, लाओ हाथ वचन दो। एक दिन मुझे बुलाकर कहा, घर से माता जी को बुला लो, मुझे उनके दर्शन करने हैं। बार बार हट करने पर मैंने अपनी माता जी को बुला भेजा। सायंकाल माता जी आ गई तो श्री महाराज जी ने बड़े प्यार से उन्हें अपने पास बैठाया और कहा, माँ अंतिम दर्शन। बार बार माता जी के मुख की ओर देखते हैं और कहते हैं, अंतिम दर्शन। फिर दूध मंगाया और अपने हाथों से माता जी को पिलाया, फिर टिकटिकी बांध कर माता जी को देखा, फिर कहा, माता जी अब जाओ। इसी प्रकार लाला साधु राम जी से कहा, लाओ वचन दो, आप मेरी मम्मी का पूरा साथ दोगे। ये सभी भक्तों को मंदिर सुंदर जानकारी देकर समाधि में चले गए। प्रातः काल से रात्रि 12 बजे तक समाधि में रहे, मैं निक्ष बैठी रही। रात्रि 1 बजे समाधि टूटी और कहा, माँ यमराज आए, आप बाहर जाओ, तब उनसे बातचीत करनी है। प्रातः 5 बजे से रात्रि 1 बजे तक श्री महाराज समाधि में रहे। लोग आते हैं तो केवल दर्शन ही मिलते हैं, बातचीत नहीं होती है। रात्रि में शादी लाल जी बिस्तर गर्म करने के लिए गर्म पानी की बोतल देते हैं। भक्त लोग रो रो कर विनती करते हैं, हे प्रभु श्री स्वामी जी हमारे साथ ही रहने चाहिए। তবে তার কয়েক ভক্তরা যদি সুর দেখাবে আর কো ট্যাক্স দ্বারা শিমলা সে না এটা কি শ্রী মহারাজ কি নাম যদি কেউ কনিদান কিয়া যা সকে ব্যাজি নে ভিতর যাকে শ্রী মহারাজ কো প্রণাম কিয়া ফির দোনো বাজুও কো ভাবি ভাবি হাত মে লেকর নাম দেখি অন্ত মে উনকা হাত অপনে সির পর রখ লিয়া ব্যাজা জি নে কহা সরম জি অপনি উত ভূমি মে হি হ্যায় ইসলিয়ে আব ইনকো তঙ্গ নহি করনা চাহিয়ে শ্রী মহারাজ নে উনকো কহ কর সব মুঝে কহকর ज के लिए बस्तर मंगवाए। छब्बीस तारीख को शुक्रवार को बैदराज चले गए। दोपहर 12 बजे लगभग श्री महाराज जी ने मुझे आवाज दी और जब मैं भीतर गई तो कहा माँ लड्डू लाओ भोग लगाना है। मंदिर में लड्डू नहीं थे तो टेलीफोन करके मैंने लड्डू मंगवाए। मैं लड्डू लेकर भीतर गई, श्री महाराज ने लड्डू हाथ में लिया और मेरी ओर टिकटिकी बांध कर देखते हुए लड्डू वाला हाथ मेरे मुंह की ओर ले गए। फिर लड्डू मेरे मुंह में देखते हुए बीनी मेरे नेत्रों से मेरी ओर देखते रहे। तब मुझे एक दिव्यानुभूति हुई, श्री महाराज जी ने वो लड्डू मेरे मुंह में ले लिया और कहा अब इसी मुंह से खाऊंगा, इसी मुंह से बोलूंगा। फिर इतने में भालू भी आ गया तो मैंने भालू को भी लड्डू खिलाया। श्री महाराज जी ने जब लड्डू डाला था तो मेरी ओर इशारा करके कहा था अब इस मुँह से खाओ। वाणी में दिव्य और था और ऐसा लगा कि श्री महाराज के भीतर जो बैठ कर खाता है उसे ही श्री महाराज जी आज्ञा दे रहे हैं कि अब वो श्री माँ के भीतर बैठ कर श्री माँ के मुख से ही खाएं। मैं आश्चर्यचकित हो गई थी। लड्डू खिलाकर श्री महाराज समाधि में चले गए थे। दिन भर के व्रत भी नहीं बदली थी। सायंकाल हुआ फिर रात हुई। 10 बजे तक मैं देखती रही। ऐसा लगा कि श्री महाराज निकल समाधि में चले गए हैं, न जाने लौटेंगे भी या नहीं। श्री शादीलाल जी बैठे हैं। नाला साधु राम जी को मैंने टेलीफोन द्वारा सूचित किया कि वे श्री राम लाल तथा श्री राम शिलादी भक्तों को लेकर आ जाएं। आधे घंटे के भीतर लाला जी भुपन जी श्री राम लाल तथा श्री राम शीतल जी आ गए। सर्दी अधिक है, कुटिया के बाहर वाले कमरे में सभी छिटे हुए बैठे हैं। मुझे बड़ी घबराहट है। श्री राम लाल पुरानी कहानियां सुनाकर सत्संग कर रहे हैं। रात्रि 12 बजे श्री महाराज जी ने आवाज दी माँ पानी। मैं शिविर भीतर गई, उन्हें पानी पिलाया। जल पीने के पश्चात फिर समाधि लग गई। श्री रामलाल ने महात्मा बुद्ध की कहानी सुनाई। योगी विधि के विधान को जान लेता है जिसे हम नहीं जानते। महात्मा बुद्ध रात भर बिना करवट बदले सोए रहे। उनके चरणों में उनका शिष्य आनंद बैठा था। बाद में महात्मा बुद्ध ने पूछा आनंद क्यों बैठे हो, सोए नहीं, क्यों नहीं सोए? आनंद बोला महाराज मैं देख रहा था कि आप करवट बदलते हो या नहीं। बुद्ध बोले जब मन शांत है तो कोई इच्छा ही नहीं तो करवट क्यों बदली जाए। फिर कहा जब महात्मा बुद्ध ने इच्छा की कि वह संसार को छोड़कर चले जाएंगे तो कोई शिष्य कुछ नहीं कर पाया। इस प्रकार सत्संग करते सवेरा हो गया। 28 तथा 29 तारीख को कई भक्त आते रहे परंतु श्री महाराज समाधि में ही रहे। हम क्या कर योग बल द्वारा श्री पुण्य शुद्ध कर लिया है। लगता है मानो 2 वर्ष का बालक हो। भक्त बड़े परेशान हैं और इच्छा रखते हैं कि श्री महाराज भक्तों के लिए कुछ वर्ष और इस शरीर को धारण करें। श्रीमती शीतल ने कहा कि 1 दिसंबर को मंगलवार है, उस दिन माँ काली का अखंड पाठ रखना होगा और वे अपने पति के साथ इसकी पूरी जिम्मेदारी लेती है। इन्हीं शब्दों के साथ गीता माँ जय माता।